युधिष्ठिर राजयोगी ब्रह्मा कुमार भ्राता मोहन सिंघल जी, उनका हम सभी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी, विगत 63 वर्षों से प्यारे बाबा के बच्चे और विद्यार्थी हैं। 1962 से आप प्यारे बाबा की पढ़ाई का अध्ययन कर रहे हैं। मम्मा बाबा की आपको पालना प्राप्त है। 1963 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया। आप राजयोग शिक्षा एवं शोध संस्थान के गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं। आप संस्था की मैनेजमेंट कमेटी के भी सदस्य हैं। आप राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की साइंटिस्ट एवं इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हैं। आपने देश विदेश में भ्रमण करके अनेक प्रकार की सेवाएं की हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, अनेक प्रकार की प्रदर्शनियां, अनेक प्रकार के अभियान आपने साइंटिस्ट इंजीनियर विंग के द्वारा पूरे भारतवर्ष के अलावा नेपाल में भी निकाले हैं। आप अनेकों अवार्ड से सम्मानित हैं। आप यज्ञ स्नेही और ऊर्जावान, सतत अध्ययन और शोध के राजयोग के अध्ययनशील, लेखनशील, प्रगतिशील बाबा की सपूत बच्चे हैं। आज आप हमें मार्गदर्शन करेंगे कि हम स्वस्थिति से परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त करें। आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी, हम पुनः एक हाथ की ताली से भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं ऐसे यज्ञ के अनमोल रत्न को अपने बीच में पाकर।
ओम शांति। बहन जी ने अभी बताया कि ट्रांसलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। ओम शांति वर्ड का भी कोई ट्रांसलेशन है? है, यूनिवर्सल शब्द है, ठीक है, तो इसके ट्रांसलेशन की तो आवश्यकता नहीं। और जो विषय बताया है बहन जी ने, स्वस्थिति के द्वारा परिस्थिति पर विजय, विजय शब्द का भी कोई ट्रांसलेशन नहीं है। टॉपिक का कोई ट्रांसलेशन है? टॉपिक स्वस्थिति समझते हैं ना, और परिस्थिति भी समझते हैं, तो किस प्रकार से हमें स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली करनी है। परिस्थितियां तो जीवन में आएंगी ही, क्योंकि ये संसार विविधता से परिपूर्ण है। सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत, हानि लाभ, इन सब का ही ये खेल बना हुआ है। तो जब इन सब का खेल बना है, ये सब विविधताएं जीवन में आएंगी ही, तो इसीलिए इनका कैसे हम सामना करें कि हर परिस्थिति में हम विजयी होते चलें, सफलता प्राप्त करते चलें। तो बाबा ने ज्ञान में अनेकों बातें बताई हैं। हमारे हैं भी वैसे चार सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट तो सब जानते हैं ना, कौन कौन से हैं चार सब्जेक्ट? हाँ, तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स में विजय प्राप्त करने के लिए हमें बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर हमें ये देखना है कि कैसे हम विजयी होते चले। तो विजय होने के लिए कोई भी विपरीत परिस्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए जो बाबा सदैव कहता है, एक जिस शक्ति की आवश्यकता है, कौन सी शक्ति? निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति। तो कोई भी अगर परिस्थिति आई है, पेपर आया है, हमारी अगर निर्णय शक्ति ठीक है, हम उस पेपर को यथार्थ रीति परख सकेंगे और फिर वैसा ही कदम उठा सकेंगे, कार्य कर सकेंगे, जिससे कि हम सफलता प्राप्त करते चले। तो इसीलिए स्वस्थिति के लिए, स्वस्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए एक चाहिए निर्णय शक्ति या परखने की शक्ति। और इस शक्ति को भी और शक्तिशाली बनाने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर हमें चाहिए एक शक्ति, वो है एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता समझते हैं ना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। सो दैट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता की शक्ति जितनी हमारी कुशाग्र होगी, अच्छी होगी, उस एकाग्रता की शक्ति से हम उस आने वाले पेपर को परख सकेंगे और उस पेपर में पार हो सकेंगे। तो इसीलिए एक निर्णय शक्ति के लिए एकाग्रता की शक्ति। और एकाग्रता के लिए तो बाबा ने कई बातें बताई हैं। एकाग्रता हम सबका अनुभव है, अलग अलग वर्षों से हम लोग ज्ञान में हैं। जब योग लगाने बैठते हैं तो मन भाग जाता है कभी। जहाँ पर मन का लगाव है, झुकाव है, खेल कूद में है, धन में है, खाने पीने में है, मार्केटिंग में है, जहाँ पर भी मन का लगाव और झुकाव है, बार बार मन उधर भाग जाएगा। फिर मन को खींच के लाना पड़ता है जहाँ हम चाहते हैं, बाबा में। फिर थोड़े समय मन साथ देगा, फिर मन कहीं और भाग जाएगा। तो इसीलिए एकाग्रता की शक्ति की आवश्यकता है और उसके लिए एक अभ्यास जरूरी है, वो अभ्यास है एकांत का। एकांत केवल अकेलापन ही नहीं, एकांत में हमारा लक्ष्य रहे एक की ही याद में अंत। बस अल्टीमेटली कोई और चीज अगर आती है तो मुझे एकांत को सफल करना है, बार बार खींच के बुद्धि को बाबा की तरफ लाना है, एक की ही याद में अंत। तो एक होता है अंदर का एकांत, एक है बाहर का एकांत। तो अभ्यास के लिए बाहर का भी एकांत चाहिए और अंदर का भी एकांत चाहिए। और एकाग्रता के लिए और साथ में क्या चाहिए? बाबा ने कहा हम सब का अभ्यास है, हमारे बाबा ने बहुत हमें खजाने दिए हैं, और सबसे अनमोल खजाने कौन से दिए हैं बाबा ने? कौन से दो खजाने सबसे अनमोल हैं? हाँ, जो हम बोल रहे हैं समझ तो आ रहा है ना, ट्रांसलेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा सबको? है ठीक, अच्छा। तो जो बाबा ने अनमोल खजाने ज्ञान योग शक्ति बहुत सारे दिए हैं, लेकिन उन सब में भी बाबा ने दो अनमोल खजाने हमें दिए हैं, समय और संकल्प का खजाना। तो बार बार देखना है, समय और संकल्प एक दूसरे से बिल्कुल बंधे हुए हैं, तो ना तो हमारा समय वेस्ट हो और ना हमारा संकल्प वेस्ट हो, व्यर्थ हो। तो जितना व्यर्थ निकलता जाएगा उतना समर्थ जो है आता जाएगा। एक शिल्पकार था, शिल्पी, पत्थर से मूर्तियां बनाता था, बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। सब कहते थे आप इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हो? तो कहता है कि नहीं, मैं तो मूर्ति तो मैं नहीं बनाता, मैं क्या करता हूँ, पत्थर के मैं चारों तरफ जो व्यर्थ है उसे निकाल देता हूँ। व्यर्थ जब निकल जाता है तो मूर्ति अंदर की खुद ही स्पष्ट हो जाती है। कोई भी चीज में बनाना हो ना, तो बाहर का चारों तरफ का जितना व्यर्थ है निकालो, मूर्ति स्पष्ट हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हमारे अंदर की संपूर्ण मूर्ति स्पष्ट रीति से हमें अपने सम्मुख और बाबा के दुनिया के सम्मुख रखनी है, संपूर्णता की मूर्ति, तो उस मूर्ति को हमें धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, वो जो चारों तरफ व्यर्थ की बातों से घिरी हुई है। हम सब भी अपनी एनालिसिस करें कि जब हम बैठते हैं ध्यान योग में तो किधर हमारी बुद्धि जाती है व्यर्थ में, बस उसको निकालने का प्रयास करते रहें। उधर जरूर कुछ ना कुछ हमारा झुकाव है, लगाव है, तभी तो उधर बुद्धि भागती है। इसीलिए उस लगाव झुकाव को पक्का करने के लिए कि वो निकल जाए, हमारी अंदर की मूर्ति स्पष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इससे क्या निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति सब आएगी, तो कोई भी परिस्थिति आए हम उसमें हार नहीं खाएंगे, जीतते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस शक्ति के आने से हमारे सामने जो दूसरी शक्ति ऑटोमेटिकली आने लगती है, निर्णय शक्ति जब जो पक्की होती जाती है, जो दूसरी शक्ति जो आती है वो आती है परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। तो जितना हम परिस्थिति आई, हम समझ गए ये परिस्थिति आई है, फिर उसका सामना करने के लिए भी तो शक्ति चाहिए, तो सामना करने का भी हमारी बुद्धि जब निर्णय सही लेगी तो सामना करने की शक्ति भी आएगी, और उस परिस्थिति का सामना करके हम सफल हो जाएंगे। तो इसीलिए पहली बात तो ये है, हमारी बुद्धि कुशाग्र करने की एकाग्रता के द्वारा वो आवश्यक है। साथ में दूसरी बात, जब ये बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, जो बाबा कहता है बुद्धि आपकी क्लीन और क्लियर हो, जितनी बुद्धि हमारी क्लीन और क्लियर होगी उतनी हम बाबा की टचिंग को भी कैच कर सकेंगे। कोई पेपर आया पेपर भी आ गया, हमने समझ भी लिया, हम उसका सामना भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार का सामना करने का अभ्यास है कि जितना हम जानते हैं उतना सामना करते हैं, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाते जितने बाबा चाहता है। तो इसीलिए बाबा ने वो भी बहुत बहुत बड़ी फैसिलिटी दी है। कौन सी? बाबा ने कहा है हर बच्चे का टीवी मेरे पास वतन में है, और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है और कोई बच्चा डगमग होता है, माया के वशीभूत होने लगता है, तो उसका टीवी ऑन हो जाता है। बहुत सारे टीवी हैं, कितने हजारों लाखों टीवी, समझ सकते हैं बाबा का हर चीज सूक्ष्म होता है, लेकिन सब ऑफ हो और दो चार एक दो ऑन हो तो ऑन की तरफ बुद्धि जाएगी, तो उस बच्चे का टीवी ऑन हो जाता है, फिर बाबा का ध्यान उसकी तरफ जाता है जो टीवी ऑन हुआ, और बाबा देखता है फलाना बच्चा मेरा किसी कमजोरी के वशीभूत है, अभी उसे शक्ति की आवश्यकता है, तो बाबा उसे शक्ति प्रदान करता है। तो बाबा जब उसे शक्ति प्रदान बाबा तो कर रहा है, लेकिन वो बच्चा भी उसकी बुद्धि भी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि बाबा की उस शक्ति को कैच कर सके। जो बाबा टचिंग दे रहा है उसे, उस टचिंग को कैचिंग पावर से यथार्थ रूप में ला सके। तो कई बच्चे तो सफल हो जाते हैं, बाबा ने दिया शक्ति, उसको पकड़ा, फिर उस माया के कमजोर संकल्प के वशीभूत नहीं होते, उससे बाहर हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जिनकी बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं है, तो बाबा तो शक्ति दे रहा है लेकिन उनकी बुद्धि दूसरी चीज में एंगेज है, माया की बातों में, कमजोरी में, व्यर्थ की बातों में, इसीलिए वो खाली नहीं है बाबा की शक्ति को कैच कर सके, तो फिर वो हार खा लेते हैं। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि कभी भी जब आए तो बाबा ने शब्द भी दिए ना, बाबा आओ, मेरे बाबा आओ, बस मुझे इस परिस्थिति से पार करो, मुझे शक्ति दो। बाबा को हम अपने को जब सौंप देते हैं तो बाबा हमें उस परिस्थिति से निकाल देता है और हार से बचा लेता है। एक तो ये भी देखते चलना है। इसीलिए बाबा कहता है आप सब मेरे चैतन्य फूल हो। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी जब क्लास में आते थे, मुझे सौभाग्य मिला है बाबा की अनेक अनेक क्लास अटेंड करने का, देखने का, बस बाबा आते थे फूल बन के, देखो बच्चे ये तो जड़ फूल हैं, जड़ फूल में भी सुगंधी होती है, देखने में खूबसूरत होते हैं, आप लोग तो चैतन्य फूल हो। तो चैतन्य फूल की सुगंधी, उनका रूप कितना होना चाहिए, वो बाबा आजकल भी कहते हैं चाल चलन और चेहरा, उससे आपका रूप भी ऐसा हो। बस शारीरिक रूप तो वही रहेगा जो बचपन से मिला है, लेकिन उसके अंदर जितनी दिव्यता भरती जाएगी, मुस्कुराहट चेहरे पर होगी, उन्नत ललाट होगा, आंखों में दिव्यता होगी, तो आंख तो सब कुछ, शरीर तो वही है, लेकिन वो आकर्षणमयी हो जाएगा, दिव्य आकर्षणमयी, स्थूल आकर्षणमयी नहीं, दिव्य, जो बाबा में, मामा में और दादियों में हम सदैव देखते रहते थे। तो इसीलिए एक तो ये देखना है कि हार न खाए हैं, तो उसके लिए क्या करें, जब दिल खुश होता है, विजयी होता है, प्रसन्नचित होता है, तो क्या है जीवन में क्या होता है? बस खुशी रहती है। हार जाते हैं तो निर्जीवता आ जाती है, और विजयी बनते हैं, मुस्कुराहट रहती है। तो किसी ने ठीक ही कहा है, सुनाई है अपने, कि फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कराना जिंदगी है, मुस्कराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। ऐसा हो हमारा अंदर की स्थिति कि हार जीत कुछ भी हो, लेकिन चेहरे के अंदर वो निराशा के भाव ना आए। इसीलिए बाबा कहता है, हार कर भी मुस्कराना जिंदगी है। उसको हम सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। एक तो ये आवश्यकता है अपनी स्वस्थिति को बढ़ाने की, क्योंकि हार जीत तो होती रहेगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हार भी हमारा सीढ़ी बन जाए विजयी होने की। हार स्वाभाविक है, जिंदगी में कभी एक बार दो बार हार होगी। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है उसकी किसी परिस्थिति में हार नहीं हो, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो विजयी बन गए। एक तो ये आवश्यक है, और क्या क्या साथ में आवश्यक है कि जब ये होता है ऐसी, और वर्तमान समय के हिसाब से हम लोगों को डबल सामना करना होता है। डबल माने, एक तो बाहर की दुनिया में रहते हैं जो भी लौकिक धंधा करते हैं, अज्ञानियों का सामना, वो तो हम सहज कर लेते हैं जब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। अज्ञानी कोई क्रोध करेगा, कोई गलत बोलेगा, तो हम कहते हैं ये तो अज्ञानी है, इस बेचारे को क्या मालूम। लेकिन परिस्थिति तब आती है जब कोई ज्ञानी आत्मा, हमसे भी बहुत सीनियर आत्मा हो सकती है, जूनियर भी हो सकती है, वो आत्मा कोई ऐसी बात करे तो वो हमारे दिल को कचोट लेती है। तो कई बार ऐसा भाव पैदा हो जाता है। दादी जी, दादी प्रकाशमणि अक्सर करके कहते थे, परिवार के अंदर जब भाई बहनें बहुत बढ़ भी जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। कल तक जिन भाई बहन का बहुत अच्छा संबंध था, हमसे बड़े प्यार से बोलते थे, लेकिन मानो किसी ने उनको हमारी गलत शिकायत कर दी, या उनके उपपास कोई ऐसी बात पहुंची जो वास्तविक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए दादी हमेशा कहती थी कि कभी भी कोई भी बात की ऐसी महसूसता हो तो तुरंत ही उस आत्मा से मिल करके हमें ये करनी चाहिए कि भाई देखो भाई जी या बहन जी, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे बीच में पहले जितना स्नेह भाव था उतना अभी नहीं है, और वो स्नेह भाव न होने से हम दोनों के बीच में कुछ थोड़ी बहुत कटुता आ गई है, और वो पहचान सकते हैं, वो भी सामने आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, तो सामने होते हुए भी वो एक रास्ते से निकल जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से, और ओम शांति नहीं होगी, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होगी, चेहरे पर खुशी का भाव नहीं रहेगा। जब अपना कोई मिलता है कितना खुशी का भाव चेहरे पर आ जाता है, लेकिन ऐसे में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे मन में भी कुछ गलत फहमी है, या हो सकता है वास्तविकता हो, किसी ने हमारे आगे बढ़ने के मार्ग में रुकावट डाली हो, कोई समस्या पैदा की हो, ऐसा हो तो जितना जल्दी से जल्दी उनसे मिल करके इस भाव को, गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। क्योंकि पहले तो गलत फहमी कुछ मन में ही होती है, चेहरे तक भी आती है, लेकिन अगर उसे दूर नहीं करते तो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है, आपस में बोल चाल बंद हो जाती है। मैं क्यों बोलूं, पहले वो बोले, वो सोचते हैं कि पहले ये बोले, इस तरह बोल चाल टूट जाती है। अब जाना तो सतयुग में हमें भी है उन्हें भी है, इस संस्कार के साथ तो हम सतयुग में जा नहीं सकते। वहां तो सब बड़े प्रेम भाव से होंगे, बहुत आनंद से मुस्कुराहट में सदा रहेंगे। तो इसीलिए यहां पर भी हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि कोई भी दैवी भाई बहन के साथ हमारे संबंधों में कटुता ना आए। अगर कटुता थोड़ी बहुत आ गई, महसूस होता है, उनसे मिल करके हमें आपस की कटुता को दूर कर लेना चाहिए। तो इसीलिए एक ये कब होगा, ये जब कटुता का भाव जब हमारे मन में रहन दिल, बाबा कहते हैं वर्तमान समय, समय प्रति समय बाबा अलग अलग गुणों का शक्तियों का वर्णन करता रहता है। जिस समय कलयुग का समय भी चल रहा है, इसका प्रभाव भी वैसा ही है। जब अति कलयुग का अति कटुता का समय आ गया तो बाबा ने हम बच्चों के लिए सामना करने के लिए एक शक्ति का आवाहन करने को हमें कहा है, वो है कौन सी, रहम दिल। हर एक के प्रति हम रहम दिल रहे। दुनिया वालों के प्रति तो हम रहम दिल हो जाते हैं, कोई गरीब आया मानो भिखारी है, मांग रहा है पैसे, दे दिए, उसे दान कर दिया, धन दान कर दिया, कुछ भी जो आवश्यकता। लेकिन अपने ही परिवार में दान कौन सा है, क्षमा दान। उसकी गलतियों को हम अंदर दिल में न रखें, उस बात को हम क्षमा करते हैं, भूल जाए। हर एक व्यक्ति जब पैदा होता है तो जन्म से ही उसमें दो शक्तियां विशेष होती हैं, चाहे दो दिन का बच्चा ही हो, हर एक समय जैसे जैसे बड़ा होता जाता है दोनों शक्तियां बढ़ती भी जाती हैं। कौन सी दो शक्तियां, एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हर एक में होती हैं, लेकिन विडंबना क्या है कि जो बात याद रहनी चाहिए वो तो हम भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो हमें वर्षों तक याद रहती है। किसी के साथ कोई व्यवहार में कोई कटुता हुई, कोई ऐसी बात आई, तो इसीलिए क्या होना चाहिए, क्षमा का भाव। मैं बीच में पूछ लूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, या आप चाहते हैं अगर हम इंग्लिश में बोलें वो ज्यादा लोग समझ सकेंगे, तो हम वो भी बोल सकते हैं। नहीं तो हिंदी का ट्रांसलेशन चल रहा है, ठीक समझ आ रही है, ओके थैंक यू। तो इसलिए क्षमा का भाव, महान आत्माओं में क्षमा का गुण विशेष होता है। तो एक हम ये डेली चेक करते चले, कोई भी बात हम देखते हैं अपने ही किसी भी भाई बहन की, उसको साथ साथ क्षमा करते चले, भूलते चले। तो ये वर्तमान समय के, इससे क्या होगा, जितना रहम दिली का भाव होगा हर एक के मन में, तो हम में वो गुण भी आता जाएगा जो बाबा ने कहा है, लास्ट सो फास्ट। जिस आत्मा में ये कमी देखी, उसमें तो बेचारे में कमी है, वर्णन हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हर आत्मा में अपने अपने गुण और अपनी शक्तियां होती हैं। तो कोई अगर कमी है, उसको या तो हम देख करके दिल में रख लें, देखो इसमें ये है, ये तो 25 साल पुराना भाई है या बहन है, इसमें भी अभी तक ये कमी, तो मैं तो अभी 5 साल पुराना ही हूँ, 10 साल पुराना ही हूँ, मेरे अंदर ये कमी हुई तो क्या हुआ। तो ऐसे करके हम या तो चला सकते हैं, या हम क्षमा कर दें। बाबा ने कहा है हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार अपना पद निश्चित कर रहा है, उस आत्मा को बिचारे को छोटा पद पाना होगा, साधारण पद पाना होगा, भले बहुत पुराना भी है, 25, 30, 40 साल पुराना, लेकिन कोई संस्कार बहुत कड़ा है, वो निकला नहीं है, उस अनुसार उसे कम पद पाना होगा, तभी तो बाद में आने वाले भी फास्ट चल के उसे क्रॉस कर सके, उसके आगे चले जाएंगे। तो इसीलिए आवश्यकता इस बात की है, हम किसी का भी गुण दोष न देखें, अगर देखने में आता भी है उसे क्षमा करते चलें और हम खुद आगे बढ़ते चलें। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर सकेगा। क्षमा वो ही कर सकता है जो वीर है, महावीर है, वो क्षमा करके आगे बढ़ता रहेगा। तो जब रहम दिली की शक्ति होगी तो इससे बाबा तो तुरंत कहता है, आप आज कोई गुण और शक्ति का आह्वान करते हो, उसमें पास होते हो, तो तुरंत ही बाबा आपको और गुणों से भर देता है। और रहम दिली का भाव जब दिल में आया तो क्या हमारे अंदर आ जाएगा स्वाभाविक गुण, दातापन का गुण, देने का गुण। जिसको जिस शक्ति की आवश्यकता है स्थूल में, जिसके पास जो खजाना होता है वही देता है ना, कोई धनवान है वो पैसे का दान कर देगा, अन्न दान, वस्त्र दान, ये तो स्थूल है। हमें इन दान की तरफ महत्व तो न देखते हुए कौन सा दान, शांति का दान, प्रेम का दान, खुशी का दान, आनंद का दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान, ज्ञान दान, जो बाबा ने हमें गुण शक्तियों से भरपूर करा है ना, वो दान देते चलेंगे तो हम दाता बन जाएंगे। और फिर क्या होगा, इससे ऑटोमेटिकली एक गुण आ जाएगा। पृथ्वी है, पांच तत्व है ना, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो धरती में ये गुण होता है दातापन का, सबसे बड़ा गुण धरती का ये है। अन्न मिलता है, जल मिलता है, फल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, सब चीज धरती से प्राप्त होती है मनुष्य को। इस कारण से जब धरती का गुण हमारे अंदर आ गया, ये दातापन का रहम दिली के कारण, तो क्या होगा, धरती से हमारी इतनी मित्रता हो जाएगी, धरती का गुण हमारे में, कि अंत समय में धरती में अगर कुछ भी हलचल होती है, भूचाल होता है, तो वो धरती हमारे कष्ट का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि मित्र मित्र की रक्षा करता है। धरती को हमने अपना मित्र बना लिया, संस्कार मिल गए धरती से हमारे, तो धरती हमें पहले से ही आगाह कर देगी और हमारे पैर ऑटोमेटिकली उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। जितना भी भूचाल आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन धरती हमारे कष्ट का, मृत्यु का कारण नहीं बन सके, क्योंकि भारत में तो हम सबको अधिकतर प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करना है ना। तो इसीलिए ये गुण अंदर हम दातापन का धारण करते चलेंगे तो धरती का ये होगा। तो और स्वस्थिति हम कैसे बढ़ा सकते हैं अपनी, स्वस्थिति बढ़ाने के लिए हमें ये तो बाबा ने बताया, सेवा जो है, हम तीनों सेवा साथ साथ करते चले। अभी अंत का समय है, अंत तो प्रदर्शनी होती है, मेला होता है, हम सेवा करते हैं, वाचा से दूसरों को समझाते हैं, वाणी से, लेकिन तीनों मन, वचन, कर्म, तीनों सेवाएं हमारी इकट्ठी हो, बस हमारा भाव ऐसा हो, प्रैक्टिस ऐसी हो। हमने खुद बहुत बार अनुभव किया है पिछले 60 वर्षों में ज्ञान में, ये कि कभी सेवा करते हैं दूसरे की भ्रकुटी की तरफ देखते हुए, नैनों में देखते हुए आत्मिक भाव से सेवा करते हैं, मुंह से ऑटोमेटिकली वचन भी बहुत स्नेह भरे और सुखदाई निकलते हैं, और कर्मों के द्वारा भी वैसे ही वाइब्रेशन, क्योंकि जैसे मन की वृत्ति होती है वैसा ही वाइब्रेशन होता है हमारा, ऑरा लाइट का होता है, और वैसा ही फिर वायुमंडल बनता है। तो इसीलिए हमारे अंदर की वृत्ति जितनी क्लियर होगी उतनी ही हमारे वाइब्रेशन बहुत स्पष्ट होंगे, ऑरा स्पष्ट होगा, और उतना ही वायुमंडल में हम सफलता प्राप्त करते चलेंगे। इसीलिए एक ये स्वस्थिति को बढ़ाने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपनी वृत्ति को बहुत शांत ऐसी रखें जो बाबा ने बताई है। और वृत्ति का मतलब, वृत्ति शब्द आया व्रत से, भक्ति मार्ग में व्रत रखते हो, अभी शिवरात्रि भी गई है, शिव जयंती, तो लौकिक में व्रत रखते हैं आज भाई ये नहीं खाना है सुबह से शाम तक। लौकिक में भी कोई हनुमान जी का, कोई अलग अलग देवताओं का व्रत रखते हैं, तो भाई आज नमक का सेवन नहीं करना है आज ये, तो व्रत, तो व्रत रखने से दृढ़ता आती है, दृढ़ता। रोज किसी वक्त खाना खाते हैं लेकिन व्रत रखा, समय पर भूख भी लगेगी, लेकिन दृढ़ता अगर मन में है तो वो समय भी पास हो जाता है, उतने घंटे व्रत रख लेते हैं। तो व्रत से वृत्ति बनती है, तो हमारी वृत्ति में दृढ़ता हो, व्रत में जितनी दृढ़ता होती है उतनी सफलता होती है, ऐसे ही वृत्ति में हमारी दृढ़ता हो, और जितनी दृढ़ता होगी उतनी सफलता होती चलेगी। तो इसीलिए आवश्यक इस बात को है, व्रत से वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से वायुमंडल, वैसा वायुमंडल बनता चला जाता है। तो इसीलिए कोई की भी सेवा करें, सेवा तो करते हैं, अब हम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें, भले कम बोले, इतना समझाना है उसके बजाय इतना ही समझाएं, लेकिन समझाते समय हमारा ध्यान उसका भ्रकुटी की तरफ हो, मुख में नैनों की तरफ हो, उसे वाइब्रेशन भी दें, और बस बाबा आप ये सेवा करा रहे हो, तन भले मेरा है लेकिन आप ये सेवा कर रहे हो, ऐसा ऑरा बने, ऐसा आवा मंडल जिससे कि इस आत्मा को बाबा आपका साक्षात्कार हो। बस बाबा को हवाले करके जब हम सेवा करते हैं उस सेवा का बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। तो एक तो ये करें, तीनों प्रकार की सेवा। दूसरा, जब भी कोई भी सेवा करते हैं कोई बात आती है, स्वस्थिति हमारी उस हिसाब से बनती है जिस हिसाब से हम सेवा करते हैं। तीनों काल को बुद्धि में रखकर हमें सेवा करनी है। कई बार सेवा करते हैं मुंह से बोल निकल गए, फिर हम उसका पश्चाताप करते हैं, मानो क्रोध आ गया, कोई बात हो गई, तो तीनों कालों का पहले उसे जो बोलना है करना है अच्छी तरह सोचें, भाई इसका परिणाम क्या होगा, उसके बाद वर्तमान में फिर उसे बोलें, उस बात को मुख से वर्णन करें, और ऑटोमेटिकली उसका भविष्य तो सफल होना ही है। अगर हमने सोचकर पास्ट को अपना सफल किया है तो वर्तमान भी सफल होगा और भविष्य भी। तो तीनों कालों का निर्णय बुद्धि में ले करके हम काम करते हैं तो सफलता होती है। तो स्वस्थिति हमारी, जिससे परिस्थिति का निर्माण होता है, अगर हम बाद में, पहले सोचा नहीं, पहले बोल दिया, बाद में चाहे जितना पश्चाताप करें, सॉरी करते रहे, माफी मांगते चाहे, लेकिन वायुमंडल तो वैसा बन गया ना, जो विकर्म बनना था वो तो विकर्म बन ही गया। तो उससे फिर क्या होता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर सदा काल के लिए संबंधों में भी कटुता आ जाती है और निर्णय हमें, अपने निर्णय पर हमें थोड़ा शंका होने लगती है। तो इसीलिए अभी ये भी देखें कि कोई भी जब बात करें तो तीनों कालों को बुद्धि में रख के बात करें। और क्या करें, जो भी हमारा कार्य हो हम उसमें हर कार्य में साक्षी हो करके कार्य करें, साक्षी दृष्टा होकर करें। अंत समय में हमें ये गुण बहुत बहुत मदद देने वाला है, साक्षी दृष्टा। और ये साक्षी दृष्टा कैसे होंगे हम, देखो साक्षी दृष्टा कहते हैं तो दृष्टा कौन है, आत्मा। आत्मा है दृष्टा और ये आंखें हैं दृष्टि। तो दृष्टा जो है इस दृष्टि के थ्रू देखती है। तो जैसे खिड़की होती है ना कमरे में, कमरे में खिड़की, तो खिड़की के, खिड़की खुद नहीं देखती, खिड़की के थ्रू देखने वाला व्यक्ति दूसरा होता है, चैतन्य। ऐसे ही आंखें खुद नहीं देखती, हम कहते हैं मेरी आंखों ने देख लिया, नहीं, आंखें तो जड़ चीज है, इस शरीर का पांच तत्वों के पुतले का एक पार्ट है, लेकिन दृष्टि के थ्रू दृष्टा देखता है, आत्मा देखती है, ये भाव रहे। तो एक है दृष्टा, दूसरी है दृष्टि। तीसरी चीज है, सारे दिन में हम सब कुछ देखते हैं आंखों से, ये सब है दृश्य। तो जैसा दृश्य हम देखते हैं वैसा ही मन पर प्रभाव होता चला जाता है। जो दृश्य, फिर हम उसी के मुताबिक एक्ट करते हैं। लेकिन दृश्य, दृश्य को हम कैसे वो करते हैं, जैसा हमारा एटीट्यूड होता है वैसा ही हम दृश्य को इंटरप्रेट करते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव हर चीज में पॉजिटिविटी देख लेते हैं। जो बाबा ने कहा है, ब्राह्मण बच्चों के साथ कोई भी अकल्याणकारी वाली बात हो नहीं सकती। भले देखने में आता है भाई ये, अरे इसकी मृत्यु हो गई, इसका इतना एक्सीडेंट हो गया, इसमें क्या कल्याण की भावना होगी बाबा ने, तो ये कोई मुंह से बोलने की बात नहीं है। बाबा को याद करके जो हमें व्यवहार करना है वो तो करें, लेकिन हर चीज में कहीं ना कहीं जो कल्याण समाया वो थोड़े समय के बाद तब हमें दृष्टिगोचर होता है, पता चलता है। तो इसीलिए ये हमारा बुद्धि योग रहे कि दृष्टांत जो भी होता है वो इवेंट, वो हमारा, हमें किस दृष्टिकोण से हम सोच रहे हैं। ये अपने को ट्रस्टी पन के भाव में रहने की कला है। ये पांच बातें, दृष्टा, दृष्टि, दृश्य, दृष्टांत, और क्या है, जो हमारा एटीट्यूड है। वैसे ही हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे, दृष्टांत माने इवेंट। भक्ति मार्ग में भक्तों की बहुत कथाएं लिखी हैं, वो भक्त, बड़े भक्त हम और आप ही तो हैं, जो हमने भक्ति मार्ग में इतनी बातें की हैं, लोगों को चमत्कारिक रूप में देखने में आई हैं, तो इस कारण से वैसा ही प्रभाव होता है। तो जब ट्रस्टी भाव हमारा होगा तो हमारी स्वस्थिति इतनी मजबूत होती जाएगी कि हर परिस्थिति पर, जैसी भी परिस्थिति हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, हर परिस्थिति पर विजय होती जाएगी। क्योंकि ट्रस्टी भाव ट्रस्टी होता है, कोई भी बात वो धन है वो उस धन का ट्रस्टी होता है। अगर मानो धन की वैल्यू कम होती है बढ़ती है उसे खुशी नहीं होती, दुख नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो धन उसका है ही नहीं, वो तो ट्रस्टी है। ऐसी मैं अपने शरीर का, इवेंट्स का, कोई भी बात होती है उनका मैं ट्रस्टी हूं। इस कारण से उस ट्रस्टी भाव से मेरे अंदर असफलता नहीं हो सकती। तो एक ये देखने चलना है। और ये सारा का सारा हमारे मन के सोचने के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए कहा है मन में कभी भी हार का भाव ना आए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कई कहावत है मन के लिए। तो इसीलिए मन को हम देखते चलें कि मन हमारा कितना शक्तिशाली होता चला जा रहा है। एक व्यक्ति आया राजा के दरबार में भिक्षा का बर्तन लेके आया, छोटा सा भिक्षा पात्र, और राजा से कहा राजन इसमें कुछ भिक्षा डाल दो। तो राजा ने मंत्री को बोला जाओ राजकोष में जाओ और वहां से जो भी सोना चांदी हीरा मोती हाथ लगे वो लाके इसमें डाल दो। मंत्री गया लाके डाल दिया, वो भरा नहीं। दूसरी बार गया वो लाके डाल दिया, फिर भी नहीं भरा। तीसरी बार, चौथी बार, कई बार मंत्री गया। अब देखने में तो वो छोटा सा था विश्वास पात्र, लेकिन वो भरता ही नहीं था। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा महाराज जरूर इसके अंदर कोई रहस्य है, इतनी बार मंत्री राजकोष से ये लाया धन धान्य, ये भरता ही नहीं है। तो उसने कहा हाँ महाराज इसमें रहस्य है, ये जो भिक्षा पात्र है ना ये मनुष्य की खोपड़ी का बना है। क्यों? क्योंकि यहां मन होता है और मन कभी भी तृप्त नहीं होता। बस एक संकल्प उठा वो पूरा किया आपने, दो और संकल्प का जन्म हो जाएगा, दो और संकल्प को तृप्त किया चार और का जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए मन जीते जगत जीत ये कहा गया है। ये हमने साकार बाबा में भी देखा, क्योंकि हमें एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वैसे तो बाबा से अनेक बार मिले, 1962 में ज्ञान में आए थे और 69 तक अनेक बार बाबा से मिलना हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि अंत समय में 17 जनवरी 69 को जैसे बाबा ने अपने पास बुला लिया, तो 17 जनवरी 1969 को हम यहाँ आ गए, हमारे लौकिक पिताजी और हम, और दो दिन तक बाबा की कंप्लीट सफल ये कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। 17 और 18 जनवरी जब बाबा पूरे कर्मातीत हो गए थे, तो वो मैं कुछ शेयर करता हूँ आपसे, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत बनना ही है। तो हमेशा बाबा से मिलते थे, बाबा को बताते थे कोई बात, बाबा पूछते थे हम उत्तर देते थे, हम पूछते थे बाबा बताते थे। लेकिन उन दो दिनों में हम बाबा से काफी कई 6 बार मिले, क्योंकि कोई और पार्टी थी नहीं, कभी कमरे में, कभी झोपड़ी में, कभी हिस्ट्री हॉल में बाबा से मिलते थे। तो बाबा से मन का भाव लेके जाते थे, बाबा से हमें ये पूछना है प्रश्न, तो बाबा सम्मुख आके दृष्टि देते थे और दृष्टि देके बाबा कहते बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें प्रश्न भी पूछने की जरूरत नहीं रहती थी, बोलने की जरूरत नहीं रहती थी, लेकिन मन के भाव को बाबा तुरंत ही परख लेता था। ऐसा एक बार नहीं, लगभग 6 बार हुआ उन दो दिनों में, 17 और 18 जनवरी को। तो जिसने अपना मन जीता हुआ होगा, मन में व्यर्थ भाव नहीं होंगे, बाबा तो कर्मातीत हो गया था, मन में कोई व्यर्थ भाव नहीं था, मन पूरी तरह जीत लिया था बाबा ने, तभी बाबा दूसरे के मन के भाव को तुरंत पढ़ करके उसका समाधान कर सकता था। तो ऐसा हमें और आपको भी बनना है। जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे, मन में सारे व्यर्थ भाव खत्म हो गए होंगे, तो हम किसी भी आत्मा के भावों को परख सकेंगे। वो आत्मा हमारे सम्मुख आएगी, हमें उसे कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसके भाव को परख के उसका समाधान करके उसे दे देंगे। और ये वही बाबा ने कहा है, अंत में रोती हुई आए व्यक्ति हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति का अनुभव करते हुए चली जाए, दुखी आत्मा आए बस हमारे चाल चलन चेहरे से ऐसे भाव प्रकट हो, उसे कुछ पूछने की जरूरत न पड़े, हमारा चेहरा ही संपूर्ण वर्णन कर दे। ये बाबा का हमने प्रैक्टिकल देखा। दूसरी बात, बाबा का देखा कि कोई भी पेंडिंग काम न हो। अंत समय में क्या संकल्प होता है, क्या बात याद आती है, कोई काम रह गया अगर होता है, अरे भाई मुझे सेवा में इतना देना था वो नहीं दिया, बस वो संकल्प लेके ही चले जाएंगे। मतलब कोई काम में, शुद्ध काम में, अच्छा काम में अगर संकल्प आता है, हम उस बात को पूरा कर लें। अभी अंत का अंत समय है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए अंत समय के लिए और न रखें। तो बाबा का हमने ये देखा, बाबा के एक दो काम पेंडिंग थे। प्रदर्शनी जिस मकान में करी थी, जो आजकल म्यूजियम है, वो मकान को लेना बाकी था, बाबा ने उस फाइल पर भी साइन किए। जितने पत्रों के उत्तर बाबा को देने थे सारे, बहुत पत्र बाबा के पास आते थे, पहले ये ईमेल और इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, तो पत्र आते थे बस, फिर बाबा पढ़ के उत्तर देते थे। लाल लाल अक्षरों में सिंधी में उत्तर होता था, और बीच में दो लाइनों के बीच में हिंदी में ईशू दादी जी उसका हिंदी में अनुवाद करके उत्तर को भेजते थे। तो इस तरह बाबा का जो जो काम पेंडिंग था, रहा हुआ था, वो बाबा ने करा। और तीसरी बात, बाबा ने उस दिन सुबह 18 जनवरी को क्लास नहीं कराई थी, थोड़ा बा सर्दी का मौसम था, बाबा का तबीयत उतना ठीक नहीं था, तो बाबा आए थे हिस्ट्री हॉल में, संपूर्ण समय बैठे रहे, योग कराया बाबा ने, लेकिन क्लास नहीं कराई। तो उस दिन बाबा को ये भी संकल्प था, आज बच्चों को क्लास नहीं कराई। तो बाबा ने सबको बोल दिया, और पहरे वाले को बोला कि भाई सबको बोलो आज क्लास जल्दी होगी, 7:30 बजे, 8 बजे रोज, 9 बजे होती है, आज जल्दी होगी, सब भोजन करके आए क्लास में। ये खास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी। तो सब भोजन करके आए, क्योंकि बाबा को तो मालूम था कर्मातीत अवस्था जब हमारी भी होगी, हमें भी मालूम होगा, बस आज मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूँ, इस शरीर से मेरे सारे हिसाब किताब बस चुकतु हो गए। तो ये भाव जब दिल में होगा, हम इसी को इच्छा मृत्यु कहते हैं। बाबा को भी देखा जैसे उस दिन इच्छा मृत्यु का वरदान फलीभूत हो रहा था, क्योंकि बाबा ने जो जो बात कही, जो जो कार्य किए, जिस भले स्पष्ट ये नहीं बोला कि मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, लेकिन बाबा ने सारे पेंडिंग काम भी, बचे हुए काम भी उस दिन करे। लास्ट में क्लास में बाबा आए, और क्लास में आके बाबा ने मुरली चलाई, और उस मुरली की अभिषेक हमेशा क्या, बाबा की एज तो काफी थी, तो बाबा को कई बार एक चीज का पेपर होता था, कौन सा, खांसी का। बस बीच में जब खांसी आती थी ना, तो कई बार तो बाबा की आंखें भी गीली हो जाती थी, हमें लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन उस दिन और हमेशा बाबा खांसी जब आती थी तो क्या करते थे, खांसी आई मुरली के बीच में, फिर थोड़ी जैसे ही बंद हुई और बंद करने में बाबा स्वस्थिति को बहुत मजबूत बनाता था। अरे बच्चे कल मैं जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनूंगा, पांचों तत्व सतो प्रधान होंगे, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, कोई भी कष्टदायक चीज ही नहीं होगी, खांसी भी नहीं होगी, तकलीफ भी नहीं होगी, कल मैं ऐसा विष्णु कृष्ण बनूंगा। और बाबा खुशी में क्या खगिया। हाँ देखो बच्चे, आप लोगों के सामने भी जब भी कोई परिस्थिति आए तो खुशी में खगिया मारो इस तरह, वाह कल मैं जाके ऐसा बनूंगा, पांचों तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा भी सतो प्रधान होगी, ये परिस्थिति होगी नहीं, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह रे मैं, वाह 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 वाह, बस ऐसे वाह करके खुशी के झूले में हम झूल जाओ। बाबा प्रैक्टिकल में यही करता था, खांसी रूपी परिस्थिति जब आती थी बाबा ऐसा करता था और थोड़ी देर में बस वो खांसी कहाँ गई, फिर बाबा मुरली चलाने लगता था और इतने वेग से मुरली चलाता था। अनेकों बार हमने देखा वो खांसी रूपी परिस्थिति पर बाबा कैसे विजय प्राप्त कर लेता था। कोई भी परिस्थितियां, एक बार कलकत्ता वालों ने मेला लगाया था, कुछ अपने एंटी थे, उन्होंने पंडाल में आग लगा दी, आग भी लग गई, चित्र भी जल गए। कई हमारे वकील भाइयों ने बोला बाबा हमें उस पर केस करना चाहिए, हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, हम जरूर विजय बनेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, नहीं, बाप कभी भी बच्चों पर केस नहीं कर सकता, और उन्होंने किया है वो भोगेंगे, लेकिन आगे के लिए आप भी सावधानी रखो, जब कभी ऐसे टेंट लगाओ उनका इंश्योरेंस कर दो, चित्रों का इंश्योरेंस, जिससे नुकसान की कुछ भरपाई हो जाए। लेकिन कभी भी कोई कुछ भी कहे उनका, हमें अपने संस्कारों में कोई भी निगेटिविटी नहीं लानी, जिससे कि हम वहां पर सतयुग में जो बाधक बने हमारे जाने। तो इस तरीके से बाबा ने 18 जनवरी को मुरली चलाई, और उस दिन चूंकि बाबा की कर्मातीत अवस्था हो गई थी, एक बार भी खांसी भी नहीं आई और एक बार भी कोई व्यवधान नहीं पड़ा, और बस बाबा ने मुरली चलाई और हम भी सामने ही बैठे हुए थे, थोड़ी लोग हुआ करते थे, और उस दिन तो कोई पार्टियां भी नहीं थी, यहीं के लोग थे, तो बस हम भी मुरली का आनंद ले रहे थे। तो देखो कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा की ये निशानी होती है कि दूसरे के मन के भाव को परख लेता है। बैठे बैठे हमारे मन में भी आया बाबा कुछ बोले हमारे लिए, क्योंकि हम बीच में कोई भी ना आए थे, बाबा ने से ऐसे बाबा ने मन के भाव परख करके बोल दिए थे सब बातें। तो बस जैसे ही मन में ये संकल्प आया कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले, अभी भी होता है ना, कभी बाबा आते हैं थे तो बाबा के पास स्टेज जाने का चांस मिल जाए, बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, बाबा की दृष्टि मिल जाए, मन में होता है। तो उस समय हमारे मन में भी यही हुआ। तो बस हमारे संकल्प की देरी नहीं थी कि तुरंत ही बाबा को संकल्प पहुंचा, और बाबा की तो कर्मातीत अवस्था हो गई थी, संकल्पों से भी परे हर एक व्यक्ति के हैं, क्योंकि विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा, विश्व की एक एक आत्मा के मन के ऊपर विजय प्राप्त करने की हुई आत्मा। तो बस बाबा ने भी कुछ महावाक्य एकदम उच्चार दिए और जो हमारे जीवन का भी एक अभिन्न अंग बन गए। नाम लेकर ही बाबा ने उच्चारा। वैसे इस रेफरेंस में बता दें कि पहली बार जब बाबा से मिले थे 62 में, तो एक्चुअली लौकिक में हमारा नाम श्री है, श्री। तो मैंने जब बाबा को बताया तो बाबा ने कहा रे अभी तो श्री कोई है नहीं, श्री तो वो होते हैं देवी देवता जिनकी आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र, अभी तो कोई भी ऐसा नहीं है। ब्रह्मा बाबा भी अपने नाम के आगे श्री नहीं लगा सकता, तो कोई भी आत्मा नहीं लगा सकती। तो अभी बाबा आज से तुम्हें नाम मोहन देता है और तुम्हें श्री जैसा बनना है। तो श्री लौकिक नाम होते हुए भी बाबा ने बुला दिया और लौकिक नाम बदल दिया, बस मोहन तब से यज्ञ में जाने जाते हैं। तो उस दिन लास्ट डे भी बाबा ने बोला, देखो ये बच्चा मोहन है। बस बाबा को जो लहर, उस वक्त मुरली की लहर ही वो चल रही थी, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो बस बाबा ने कहा, देखो ये बच्चा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा, बहुत मीठा बच्चा है और अंत में संपूर्ण अंत तक बन जाएगा। तो भगवान के महावाक्य भी अंत में सुनना और अपने लिए उसको अपने ऊपर धारण करना, इसे हम अपना परम सौभाग्य मानते हैं। और बाबा ने मेरा ही नहीं आप सबका भी नाम बदला हुआ है, आप सब भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो उस नाम में जितने हम स्थित हो जाए। तो मैं तो ये समझता हूँ ब्रह्मा बाबा ने जो हमारे सामने रोल मॉडल रखा, हमें ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम चल रखते हुए सो स्थिति को हम परिपक्व करते चले। तो ब्रह्म कुमार तो हम बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं वो सब हैं। अब और हमें क्या बनना है, ब्रह्मा बाबा के कदम पर चलते हुए और ब्रह्मा बाबा जैसा इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना है। मरेंगे तो सभी, हम सभी हर एक ने जिसने शरीर छोड़ा, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जैसे इच्छा मृत्यु को प्राप्त किया तो अंत में हम सब भी अपने इच्छा मृत्यु को प्राप्त करें। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम भी ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चलते रहें। और जो ब्रह्मा बाबा ने पांचों तत्वों से बिल्कुल मित्रता तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त की, तो हमें भी तत्वों के ऊपर, जैसे पृथ्वी के तत्व का बताया आपको दाता बन के विजय, ऐसे अगर हम अपने व्यवहार के अंदर एडजस्टमेंट का गुण धारण कर लेंगे, पानी की तरह पानी में एडजस्ट होने का गुण होता है, गिलास में ले लो गिलास में, कटोरी में ले लो कटोरी, चम्मच में ले लो चम्मच, ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसा एडजस्टमेंट, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सके, तो उससे क्या होगा, जैसे पृथ्वी हमारे प्राण नहीं ले सकती, ऐसे जल भी जितनी बाढ़ आएगी, सुनामी आए, तूफान आए, कुछ भी जल भी हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। ऐसे वायु भी, वायु हमें सदा हल्का बनाती है। देखो पृथ्वी हर चीज को नीचे खींचती है और वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, लेकिन विपरीत होते हुए भी जीवन भर साथ साथ रहते हैं। पर जहां पृथ्वी है वहां वायु है, ऐसे हम अपने परिवार में संबंधों में जहां रहे बहुत विपरीत स्वभाव होंगे लोगों के, लेकिन विपरीत होते हुए भी हमें साथ में रहना है, कभी भी छोड़ के जाने का संकल्प न रहे। इस रीति से पांचों तत्वों के साथ हम जब अपनी मित्रता कर लेंगे तो बाबा के साथ समान कर्मातीत हो जाएंगे, हमारी स्वस्थिति भी इतनी बलशाली हो जाएगी कि हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए बाबा समान कर्मातीत बनकर बाबा के साथ साथ पहले परम धाम जाएंगे और बाद में फिर सतयुग में आके पार्ट बचाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।